आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार शशि कुमार के साथ। यौन अपराधी जोशुआ डेल ब्राउन के नए चाइल्ड केयर सेंटरों से संबंध सामने आने के बाद चाइल्ड केयर व्यवस्था में रिकॉर्ड दर्ज करने की प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने 4 और एफिनिटी एजुकेशन संचालित केंद्रों की पहचान की है जहाँ ब्राउन पहले कार्यरत था, जिसके बाद 800 से अधिक बच्चों को संक्रमण परीक्षण कराने की सलाह दी गई है। ब्राउन पर अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच पॉइंट कुक केंद्र में 2 साल से कम उम्र के 8 बच्चों के साथ यौन शोषण के 70 से अधिक आरोप लगे हैं। जिन नए केंद्रों की पहचान हुई है उनमें मिकलेहम स्थित किड्स एकेडमी और टारनेट ग्रीन्सबोरो तथा ब्रेबुक में स्थित माइलस्टोन्स अर्ली लर्निंग शामिल है। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने चैनल 7 को बताया कि शिक्षकों ने कहां कहां काम किया है इसे ट्रैक करने के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए। वहीं न्यू साउथ वेल्स सरकार ने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने के लिए पारित डिजाइनों की एक पैटर्न बुक लॉन्च की है, जिससे नए घरों को सिर्फ 10 दिनों में मंजूरी मिल सकती है। इस योजना में 8 प्रकार के लो राइज डिजाइन शामिल हैं, टेरेस, टाउन हाउस और मैनर हाउस, जिनकी सामान्य कीमत $1,000 होती है, लेकिन सब्सिडी के तहत पहले 6 महीनों के लिए इन्हें केवल $1 में उपलब्ध कराया गया है। प्रीमियर क्रिस मिंस का कहना है कि यह पहल खासकर युवा परिवारों को घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने और हाउसिंग मार्केट में समानता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अर्बन प्लानर्स ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे सिडनी के आवास संकट को हल करने की दिशा में एक व्यवहारिक और डिजाइन आधारित कदम बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि बदलाव धीरे धीरे होगा, तुरंत नहीं। वहीं ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच नए व्यापार समझौते के तहत जल्द ही जुजुबीज ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध हो सकते हैं। जुजुबीज एक छोटा लाल भूरा फल होता है जिसे ताजे और सूखे दोनों ही तरह से खाया जाता है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीशी और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने बीजिंग में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पहली बार चाइना में ऑस्ट्रेलियाई सेबों का निर्यात भी शामिल है। एल्बनीशी ने अपनी 6 दिवसीय यात्रा के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चेयरमैन झाओ लेजी से भी मुलाकात। एल्बनीसी ने कहा कि ये समझौते ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच मजबूत सहयोग को दर्शाते हैं। टॉरेट स्ट्रेट द्वीपों के पारंपरिक मालिकों के एक ऐतिहासिक मामले को खारिज किए जाने के बावजूद भी विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भविष्य में इंडिजिनस क्षेत्रों में पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों से जुड़े कानूनी मामलों में वृद्धि देखी जाएगी। मंगलवार को फेडरल कोर्ट ने उस ऐतिहासिक मामले को खारिज कर दिया जिसमें यह तर्क दिया गया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने टॉरेस स्ट्रेट द्वीपों को जलवायु परिवर्तन से बचाने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अदालत ने पाया कि मौजूदा कानूनों के तहत सरकार ने अपनी देखभाल की मानक जिम्मेदारी का उल्लंघन नहीं किया है। यह मामला टॉरेस स्ट्रेट के पारंपरिक मालिकों द्वारा लाया गया था, जो यह साबित करना चाहते थे कि जलवायु परिवर्तन उनके सांस्कृतिक जीवन और भूमि से जुड़ी परंपराओं को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि अदालत ने उनके तर्कों को सहानुभूति के साथ स्वीकार किया, लेकिन कानूनी रूप से सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया के दक्षिण पश्चिम में इजरायल ने लगातार दूसरे दिन हवाई हमले जारी रखे। इजरायल ने कहा कि उसका उद्देश्य सीमा क्षेत्र से सेनाओं को हटाना और स्थानीय द्रूज अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करना है। रविवार से शुरू हुई झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे इजरायली सीमा के पास हिंसा में तेजी आई है। यह उथल पुथल अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शराह के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिन्होंने दिसंबर में वशर अल असद को सत्ता से हटाया था, लेकिन सीरिया पर अब तक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके हैं। हालांकि उनके आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन शराह के इस्लामी नेतृत्व वाली सरकार को अल्पसंख्यक समुदायों से गहरा अविश्वास झेलना पड़ रहा है, जो मार्च में अलावित समुदाय के सामूहिक नरसंहार से और बढ़ गया है। और अंत में भारत की खबरें। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद सराज घाटी की 12 ग्राम पंचायतों से सड़क संपर्क टूट गया है। दो बड़े पुल और कई सड़कें बह जाने के कारण यहां राहत पहुंचाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पडोह कस्बे से ब्यास नदी पर बगुलामुखी माता मंदिर तक बना रोपवे इन ग्रामीणों की जीवन रेखा बन गया है। हालांकि शुरुआती 10 दिनों तक मुफ्त सेवा देने के बाद अब हर व्यक्ति से 50 रुपये किराया वसूला जा रहा है। सब्जी, दूध और फूलों की फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। कई फसलें खेतों में सड़ रही हैं और दूध सीमित मात्रा में ही बाजार पहुंच पा रहा है। सरकारी राहत सामग्री भी रोपवे से लाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों से उस पर भी 1 रुपये प्रति किलो किराया लिया जा रहा है। इस बीच पुल के निर्माण को लेकर राज्य की PWD और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। ऐसे में स्थानीय रोपवे पर अपनी निर्भरता को लेकर लोग चिंतित हैं। इसी के साथ 16 जुलाई 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।